श्रोते हो नमस्कार. FM 101.4 मेगाहर्ट्झवर आकाशवाणीचं हे नाशिक केंद्र आहे. म्युझिकल मॉर्निंग या कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत. आजच्या कार्यक्रमात ऐकूया अमृतकाल में गांधी विचारों की सार्थकता याविषयी निमकर ॲग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉक्टर अनिल राजवंशी यांच्याशी शैलेश माळोदे यांनी हिंदीतून साधलेला संवाद.
श्रोताओं नमस्कार. केंद्रीय बजट हाल ही में प्रस्तुत किया गया है 1 तारीख को, और उस बजट के मद्देनज़र हमें कुछ चीज़ों का नए तौर से विचार करना आवश्यक हो गया है. इस बजट में क्या है, अगर हम माने कि 75 वर्षों के बाद अमृतकाल शुरू होगा हो गया है, तो इसमें गांधी जी के विचारों का स्मरण करना भी बहुत आवश्यक है. ऐसी स्थिति में 30 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि थी, उस संदर्भ में हमने एक रिकॉर्डिंग की थी, एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था. उस कार्यक्रम के पार्श्वभूमि पर हमने नारी यानी निमकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर अनिल राजवंशी जी से दूरध्वास पर बातचीत की थी. उस संवाद का इस बजट की पार्श्वभूमि पर पुनः प्रसारण आपके लिए हम कर रहे हैं. मोहनदास करमचंद गांधी इस व्यक्ति ने राजकीय सामाजिक आर्थिक चिंतन ही काफी गहराई से किया. दैनंदिन व्यवहार में हम जो चीजें करते हैं उसका जोड़ भारतीय आदर्शों के साथ किया, और इसीलिए उनके विचार यह अमृतकाल के लिए भी उतने ही अनुकूल है, यह हमें मानना पड़ेगा. महात्मा गांधी के विचारों का जिक्र करने की बात केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी कई बार की, इससे हमें ये सीधे सीधे ध्यान में आता है. तो लीजिए सुनते हैं डॉक्टर अनिल राजवंशी, निमकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फलटन जिला सातारा के निदेशक तथा प्रखर गांधीवादी विचारों के न सिर्फ पुरस्कर्ता बल्कि उसको अपने व्यवहार में आचरण में लाने वाले और उसका प्रचार करने वाले एक स्पिरिचुअल अभियंता डॉक्टर अनिल राजवंशी से बातचीत. सर, महात्मा गांधी जी का जो दर्शन है, उस दर्शन का जो व्यावहारिक उपयोग है, उसके बारे में इतना मूलभूत विचार करने वाले जो बहुत कम लोग भारत में हैं अभी इस समय, और खास करके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करते हुए गांधी जी का रिलेवेंस समझ के उस बारे में कुछ मूलभूत मौलिक धारणाएं बनाकर उसके बारे में कार्रवाई करने वाले लोग जो बचे हैं, उनमें डॉक्टर अनिल राजवंशी यानी आप शामिल है. आपसे इस बारे में ही हमें आज बात करनी है कि जिसमें ये 21वीं शताब्दी की बात जब हमेशा होती है तो प्रौद्योगिकी की बात होती है, लेकिन उसमें गांधी जी कहाँ बैठते हैं, कहाँ फिट होते हैं. इसके अलावा आज की जो पीढ़ी की बात हो रही है, वो पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिस्ट, मतलब भोगवादी संस्कृति की विक्टिम है, ऐसा कहा जाता है. तो उनके सामने हम गांधी जी किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि गांधी जी प्रौद्योगिकी के बारे में जो सोचते थे और इसके बारे में जो बात करते थे, वो एक नवप्रवर्तन यानी इनोवेशन की बात होती थी, लेकिन फिर भी हम उसको पुरानी क्यों मानते हैं, ऐसी धारणा क्यों है, लोगों में ऐसी धारणा क्यों है, और आप इस धारणा को गलत कहेंगे क्या, किस तरह से कहेंगे?
देखिए ऐसा है, हाँ, मेन चीज क्या है, गांधी जी के बारे में और गांधी जी ने जो लिखा उसको लोग पढ़ते नहीं है, और जब गहरा अध्ययन नहीं होता है तो उल्टी सीधी बातें कही जाती. गांधी जी ने हमेशा कहा कि मैं इस शरीर का पुजारी हूं और ये पूरी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, तो अगर इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी का मैं पुजारी हूं तो मैं कैसे टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट जा सकता हूं. जैसे गांधी जी जैसे महान व्यक्ति जो कि बिल्कुल योगी थे, तो जब एक आदमी का माइंड बहुत पावरफुल हो जाता है तो हर चीजों को बहुत गहरे से समझता है और उसी के ऊपर वो लिखते थे. तो उन्होंने कहा कि जो फ्यूचर है इस दुनिया का वो सेंट्रलाइज नहीं है. ये देखिए कि ये 100 साल ही वॉज अहेड ऑफ टाइम. डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, जिसकी वजह से कि मेरे हर गांव में आई शुड बी एबल टू प्रोड्यूस थिंग्स फॉर माय यूसेज। और उसके लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़े थे, साइंस की बैकग्राउंड नहीं थी, उस समय सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी हमारे गांव के लोग कर सकते हैं मैं उनको ही बढ़ावा देना चाहता हूँ। अगर वो आज होते और आज वो इंटरनेट देखते और बाकी चीजें 3D प्रिंटिंग देखते तो कहते कि इससे अच्छी चीज क्या है कि हम सारे गांव की सारी चीजें जो है हम गांव में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि वो डिजाइन चाहे न्यूयॉर्क में हो, बोस्टन में हो, कहीं भी हो, लेकिन इंटरनेट के जरिए वहां आ जाएगा और हम सब कुछ कर सकते हैं।
अच्छा,
तो इसलिए जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ये होती है कि लोगों ने गांधी जी को ध्यान नहीं किया है, गहराई से नहीं गए हैं, और फिर कुछ हो सकता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हो कि भाई गांधी जी क्योंकि किसी विचारधारा से जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें आजादी दिलाई तो उसको जो है अपोज करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी अपने देश के महान लोग हुए उनको हम समझें और उनका अध्ययन करें और उनसे हम प्रेरणा लें, क्योंकि जितने ये बहुत ही बुद्धिमान लोग होते हैं उन्होंने बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन रेज किए होते हैं, उन फंडामेंटल क्वेश्चन का उस समय आंसर नहीं होता है, लेकिन आज की तारीख में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस बढ़ती जाती है वो आंसर मिल सकते हैं।
सर आपने बिल्कुल सही फरमाया है, ये जो आंसर्स की बात है उसी को मद्देनजर में आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले एक जमाने में था कि हमारे यहाँ हर चीज की कमी थी और इसीलिए गांधी जी ने कपड़ा तक बहुत कम इस्तेमाल करने की बात की थी, आज जहाँ बहुतायत हर चीज की हो गई है तो उसकी वजह से एक नई समस्या लोगों के सामने दिखाई दे रही है कि ये बहुतायत का डिस्पोजल कैसे हो, जिसका संबंध पर्यावरण से कैसा लगाया जाए और किस तरह से ऐसा एक सस्टेनेबल शाश्वत तरीके से जिया जाए, तो इसमें गांधी जी का दर्शन क्या कहते हैं?
हाँ, उसमें देखिए गांधी जी का इनफैक्ट सारी लाइफ ही ऐसी थी, उन्होंने कहा कि उनका एक ही बहुत बड़ा वाक्य है कि वी शुड यूज रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। और आज जो तमाशा है वो ये है हवस का, हर एक को हवस है, और हवस क्यों होती है, क्योंकि जब आदमी इनसिक्योर होता है तब हवस बढ़ती है, जब सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत आ जाती है तब वो सोचता है कि भाई इन चीजों की क्या जरूरत है, जो चीज मेरे इस्तेमाल के लिए है मैं उसी को लूंगा, उसी को खरीदूंगा। गांधी जी जो थे वो बहुत ही इंटरनली सिक्योर मनुष्य थे, क्योंकि बहुत वो इवॉल्व पर्सन थे और बहुत ही बड़े योगी थे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो सबसे बड़ी चीज है आज की दुनिया में वो सस्टेनेबिलिटी की है। और हम इस टाइम पर ये बता रहे हैं कि हम इंडिया जो है वो विश्व गुरु होगा, तो विश्व गुरु कैसे होगा, मैं समझता हूँ गांधी जी की जो विचारधारा थी उस पर अगर हम अमल करें तो हम जरूर विश्व गुरु बन सकते हैं। इसी के इसी तहत पर मैंने किताब भी लिखी है, बहुत से लेक्चर्स भी दिए हैं, स्पिरिचुअलिटी प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू सस्टेनेबिलिटी एंड हैप्पीनेस, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गांधी जी बिल्कुल यही करते थे। वो इतने सिक्योर थे बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और ये लोग भूल जाते हैं कि गांधी जी हर टेक्नोलॉजी यूज करते थे। 1935 में उनके वर्धा में टेलीग्राफ था, उनके खुद के कमरे में, कहीं जाना होता था कार से जाते थे, ट्रेन से जाते थे, वो सारी टेक्नोलॉजी यूज करते थे। अब वो खाली उनका यही कहना था कि भाई देखो हमें जो है जो भी मैं यूज करता हूँ इट शुड बी प्रोड्यूस इन माय लोकल विलेज, वो चीज नहीं हो पाई थी उसमें, लेकिन आज की तारीख में हो सकती है। तो आपने जो कहा ना कि ये सस्टेनेबिलिटी की जो बात है, मैं समझता हूँ कि इसी फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल, मैं नहीं कहता कि वो वी शुड बी एंटी टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट वी शुड नेवर बी एंटी टेक्नोलॉजी। हम हमेशा जो है यही सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी गिव्स अस विजडम टू यूज द टेक्नोलॉजी प्रॉपरली।
हाँ, मुझे याद है सर, आपने गांधी जी के ये इनोवेटिव बिहेवियर और इनोवेटिव आइडियाज की मद्देनजर आपने गांधी इंजीनियर के दर्जे के टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजी यूज करने वाले थे, ऐसा एक आर्टिकल आपने लिखा था, वो मैंने पढ़ा था।
उसमें मैंने यही कहा था
हाँ,
कि देखो इंजीनियर की जो डेफिनेशन है
हाँ,
वो वैसे तो इंजीनियर जो वर्ड आया है वो कि जो इंजन चलाते हैं, जो इंजन पर काम करते हैं, ऐसे बहुत प्राचीन बात उसमें होता था। इंजीनियर की सबसे बड़ी डेफिनेशन वो ये है कि कोई भी चीज को वो देखे एंड ही वुड लाइक टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। वो अगर किसी की चप्पल ठीक नहीं थी तो वो चप्पल जो है उसको ठीक कर देते थे। उसके बाद में उनके अगर वर्धा आश्रम में आप जाएंगे तो सांप पकड़ने की बड़े बड़े यंत्र बनाए थे उन्होंने उन्होंने नहीं बनाए थे कि उन्होंने एडवाइस किया था। और कोई भी चीज होती थी उसको ही यूज्ड टू ट्राई टू सॉल्व इट। दैट वाज द हॉलमार्क ऑफ अ वेरी ग्रेट इंजीनियरिंग ब्रेन। फिर लोगों को मालूम नहीं है कि उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि अच्छा मग्न चरखा बनाया जाए 8 स्पिंडल का, और उस जमाने में उन्होंने उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा था।
बाप रे,
1,00,000 रुपए 1930s में इज इक्वल टू अराउंड 8 करोड़, नोबेल प्राइज से भी बड़ा इनाम है।
बराबर।
तो जो आदमी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना बड़ा प्राइज रख सकता है वो कैसे एंटी टेक्नोलॉजिस्ट होगा।
बिल्कुल।
इसलिए मैंने लिखा था कि गांधी जी बेसिकली बाय हार्ट ही वॉज एन इंजीनियर।
सर वही अभी हम आज की पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो हमेशा यह होता है कि उस पीढ़ी के सामने हम कहते हैं कि कोई अच्छा रोल मॉडल नहीं है और वो इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज के बहुत ज्यादा प्रभाव में रहते हैं। तो इन्फ्लुएंसर के हिसाब से आप गांधी जी का एक चित्र, एक चरित्र की बात करें तो आज 21वीं शताब्दी में अनेक तरह की समस्याओं से जब पूरा युवा वर्ग जूझ रहा है, उनके कोई मानसिक समस्या हो या भविष्य के लेकर, आपने कहा था इनसिक्योरिटी की बात, उसको लेकर, तो उस पीढ़ी के लिए आप क्या मंत्र बताएंगे गांधी जी के जीवन से?
ऐसा है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप उस व्यक्ति को किस निगाह से और कितनी गहराई से देखते हैं। जब सब लोग जो है वही देखें कि भाई वो एक थोड़ी छोटी सी धोती पहनकर और खाली गांव में घूम रहा है तो वो जो है बहुत ही पेरिफेरल विजन से देखने वाली बात है।
एग्जैक्टली।
हमें देखना चाहिए उनकी गहराइयों को, उनकी कि उनकी जो विजडम था, जो उनका उन्होंने कहा था, जिन चीजों के बेसिक इश्यूज को अगर हम उसको देखकर प्रकट करें कि भाई एक विद्वान आदमी ने ये कहा था, हम आगे कैसे चल सकते हैं, तब उसका यूजफुल होगा। क्योंकि क्या है कि पुराने, जैसे मैंने कहा कि ये जो बहुत बड़े लोग थे, मैं जब पढ़ाता था अमेरिका में तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि तुम हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ो, जो जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसकी हिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि जिन लोगों ने उस साइंस को डेवलप किया, उस साइंस को डिस्कवर किया, वो बड़े विद्वान लोग थे और उन्हें बड़ी फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे थे। और उस जमाने में जिस समय उन्होंने डिस्कवर किया था उनके सोल्यूशन नहीं थे, क्योंकि सोल्यूशन होते तो सब चीजें हो ही जाती।
बराबर है।
लेकिन वो फंडामेंटल क्वेश्चन जो है वो हमेशा रहे, और जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वी आर एबल टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ कि अगर लोग गांधी जी के फंडामेंटल विजडम और क्वेश्चन को समझें और पढ़ें और फिर रिलेट करें प्रेजेंट टाइम्स में, प्रेजेंट ईरा में, तो बहुत चीजें हो सकती हैं। तब रोल मॉडल मिल सकता है, बजाय ये हॉलीवुड बॉलीवुड के रोल मॉडल जो कि, और बहुत से अपने देश के जो वो भी हैं और भी लोग हैं, दीज आर नॉट रोल मॉडल।
सर एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सवाल इस तरह से निगड़ित है सर कि जो यंग जनरेशन है वो, चूंकि हम उनको हमेशा दोष देते रहते हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर रही है, लेकिन जहां तक हमारे यहाँ हिंदू धर्म की प्रचलित परिस्थिति के अनुसार 4 जो आश्रम बताए हैं उसमें वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम अंतिम में आता है, लेकिन जो वानप्रस्थ आश्रम जो है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाने के बाद में विड्रॉल होके ठीक गाइडेंस करना। वानप्रस्थ आश्रम हमारा बिगड़ा हुआ है इसीलिए यंग पीढ़ी बिगड़ी हुई है, ऐसा आपको नहीं लगता? अगर हम पूरे देश का एक चरित्र को एक जीवन की तरफ ले,
नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि यंग बच्चे जो होते हैं वो हर पीढ़ी में स्मार्ट होते हैं। ये सबसे बड़ी खराब चीज है कि लोग कहेंगे नहीं नहीं हम लोग कैसे थे और अभी यंग लोग खराब हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर पीढ़ी के में जो बच्चे होते हैं एंड यंग लोग जो होते हैं दे आर वेरी स्मार्ट। जो गलती होती है, जो गड़बड़ हुआ है वो ये है कि जो ओल्डर जनरेशन है उसमें उनको ठीक से गाइड नहीं किया है। जब आपको ही हवस हो जाएगी, देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं तो IIT में बहुत पढ़ाता हूँ, कि बच्चा जैसे ही IIT में जाता है उसके खुद के भी कुछ अरमान होंगे, खुद कुछ करना चाहेगा, लेकिन इतना प्रेशर होता है उसके फैमिली से कि अब तुम IIT में आओगे, अब तुम्हें जो है अच्छा जॉब मिलना चाहिए और तुम उसको बहुत पैसा बनाओगे, तो सारा का सारा जो फोकस है, क्योंकि जो एजेड लोग हैं उनके फेल्ड जो अरमान है, उनके फेल्ड जो एम्बिशंस हैं, वो अपने बच्चों पर थोप कर उसको पूरा करना चाहते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज।
बिल्कुल।
तो उसमें अब ये तो देखिए सोसाइटी का वो है, मैं बहुत से बच्चों को ये राय देता हूँ कि भाई तुम अब नाबालिग तो हो नहीं, अब बालिग बन गए हो, यू शुड हैव एन इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तुम अपने इतने माँ बाप से क्यों इतना प्रभावित हो, ये चीज इसमें टाइम लगेगा। यूरोप में, अमेरिका में चिल्ड्रन दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, उसका बहुत से कारण है। तो इस तरह के इंडिपेंडेंट थिंकिंग जब बच्चों में आएगी तो फिर वो देखेंगे कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं सही है।
बिल्कुल।
लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी ओल्डर जनरेशन है उसको ये करना चाहिए कि जैसे गांधी जी जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी थी उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में समझें और फिर उसको बच्चों के और यंग लोगों के सामने रखें, तो उससे आगे बढ़ेगा। और यही मैं करता हूँ अपने सारे भाषण में, आई टॉक अबाउट गांधी जी बेसिक फंडामेंटल विजडम, मैं उनके ऊपर चीजों को नहीं बताता हूँ और देखता हूँ, आई लुक एट द बेसिक फंडामेंटल विजडम। तो वो चीज अगर होगी तो वो उससे बहुत देश को फायदा मिलता है।
सर, गांधी जी के दर्शन के बारे में मैंने जैसे कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बारे में सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी आपने काम करके उस काम को बहुत ही उच्च दर्जे के साथ लोगों तक पहुंचाया है, गांधी जी के दर्शन को भी पहुंचाया है आपने। ये आपका कीमती समय आकाशवाणी नासिक के कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए मैं शैलेश मालोदे, डॉक्टर अनिल राजवंशी सर, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
थैंक यू वेरी मच।
आताच आपण ऐकलात अमृतकाल में गांधी विचारों की सार्थकता, या विषयी निमकर ऍग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉक्टर अनिल राजवंशी यांच्याशी शैलेश माळोदे यांनी हिंदीतून साधलेला संवाद।